अनन्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया ऊरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यम् स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय राधा रमण हरि बो जय जय राधा रमण हरि बो
जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा।
सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धे पूज्य स्वामी श्री शांतात्मानंद जी महाराज, समादरणीय श्री झुंझुनवाला जी, आदरणीय श्री डालमिया जी, जाजू जी, भाटिया जी, अरे बत्रा जी, अशोकपाल जी और समुपस्थित समस्त भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः भगवान श्याम सुंदर की जो वो दिव्य लीला है, जिस लीला में प्रवेश के लिए जन्म जन्मांतर तक संत महापुरुष साधना करते, जिस लीला के दर्शन के लिए ब्रह्मा जी, उद्धव और सुखदेव जैसे महापुरुष लालसा करते, ये वो दिव्याति दिव्य लीला है, महाराज लीला। इसमें थोड़ा सा अगर ठाकुर जी से प्रेम है, अपनापन है, तो उस लीला का इतना रस है, क्योंकि रास का अर्थ ही होता है रसानाम समूहा, अनेक रस जहां एकत्रित हो जाएं उसका नाम रास है, जितने रस है। और वो रस भगवान से जुड़े हुए हों, महाश्चासौ रासा महारासा, वो रस भगवान से जुड़ जाए उसी का नाम महारास होता है। ये दिव्याति दिव्य लीला जो इस पवित्र प्रांगण में, जहाँ महापुरुषों का निवास, सेवा और सद प्रवृत्तियाँ, दिव्य प्रवृत्तियाँ जहाँ चलती हैं, वो दिव्य प्रांगण है श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम। हम लोग प्रवेश करते हैं भगवान श्याम सुंदर, जिनको शरद पूर्णिमा का दिव्याति दिव्य मनोरम दृश्य देख करके अपनी अत्यंत प्रिय गोपियों की स्मृति होती है, याद आती है। भगवान कृष्ण याद करते हैं गोपियों को। आज ही वो सुंदर समय है जिस समय गोपियों को दिया हुआ वरदान मेरे को पूर्ण करने का अवसर है। ये वो गोपियां है, महाराष्ट्र के प्रारंभ से भी अगर हम देखें, भगवान जिनके लिए संकल्प करते, भगवान जिनके लिए योग माया को स्वीकार करते, और इतना ही नहीं, भगवान जहाँ जमुना पुलिन पर जा करके जिनका आवाहन करते, भगवान जिनको बुलाते, ये वो गोपियाँ हैं। ये गोपी बनना भी कोई सहज काम नहीं है, सरल काम नहीं है। गोपी शब्द का अर्थ ही हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, गोपायति कृष्ण रसम इति गोपी, जो कृष्ण रस को छिपा के रखती है अपने जीवन में उसका नाम होता है गोपी। प्रकट नहीं होने देती, अंदर ही अंदर भगवान कृष्ण का प्रेम चलता रहता है। अथवा गोभी ही इंद्रिय ही पीबती कृष्ण रसम इति गोपी, प्रत्येक इंद्रिय के माध्यम से जिसके जीवन में कृष्ण रस ही प्रकट हो रहा है उसका नाम गोपी। वो गोपियां हैं। गोपी बनना सहज काम नहीं है, तो उन गोपियों को भगवान कृष्ण जमुना पुलिन पर जा करके देखते हैं। क्या देखते हैं? शरद पूर्णिमा का दिन तो समाप्त हो चुका है, संध्या हो रही है, निशा का प्रवेश है रात्रि का। पूर्व दिशा से पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र निकलता है, और जब पूर्ण चंद्र उदय होता है तो थोड़ा लालिमा होती है, लालिमा रक्तिमा, लालिमा रक्तिमा आप लोग जानते हैं, थोड़ा रेडनेस होती है। तो यहाँ पर महर्षि व्यास कहते हैं चंद्रमा ने अंतरिक्ष में लालिमा क्यों बिखेर दी? चंद्रमा ने देखा कि प्रभु चंद्र वंश में अवतरित हुए हैं और ऐसी विलक्षण दिव्य लीला करने जा रहे हैं, तो इस रक्तिमा को अनुराग का रंग माना गया है। अनुराग, तो अनुराग का वातावरण वहां पर चंद्रमा ही पहले से निर्मित कर देता है। पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित हुआ और अनुराग का एक वातावरण निर्मित करता है, माने पूर्व दिशा अनुरंजित है। किससे? अनुराग के रंग से। उसके बाद भगवान कृष्ण जमुना पुलिन पर खड़े होकर के जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम, कलम, भगवान ने वेणु वादन किया लेकिन क्या बजाया? कलम। कल शब्द का प्रयोग है यहां पर, और कल शब्द को शब्दकोश में जो अर्थ किया गया, कलम च मधुरा स्फुटे, कल शब्द मधुर बहुत है लेकिन स्पष्ट नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, स्पष्टता नहीं है लेकिन मीठा बहुत है। कई महापुरुष इस कलम को क्लीम बीज भी मानते हैं, प्रेमोत्पादक शब्द था। बोले भगवान तो बहुत स्पष्ट बोल सकते थे, बांसुरी के द्वारा नाम ले लेके बुला सकते थे। जीव गोस्वामी जी कहते हैं भगवान कृष्ण अखिल कलादि गुरु, वो जानते हैं हजारों की संख्या में गोपियां, और एक एक गोपी का नाम लूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा, इसलिए एक ऐसा शब्द बांसुरी में बजा दिया, स्पष्ट नहीं है लेकिन मधुर है, और जिस गोपी ने सुना उसको लगा श्री कृष्ण की बांसुरी मेरा नाम ले रही है। अगर एक का नाम लेते तो बाकी गोपियों को प्रतीक्षा करनी पड़ती। यह श्री, यह भगवत्ता, एक शब्द बजाया और श्री राधा रानी ने सुना तो उनको लगा बांसुरी कह रही है श्री राधा। ललिता ने सुना तो उसको लगा बांसुरी कह रही है ललिता। विशाखा ने सुना तो उसको लगा बांसुरी कह रही है विशाखा। श्यामा ने सुना तो उसको लगा बांसुरी कह रही है श्यामा। हर गोपी को अपना नाम ही सुनाई पड़ा उस शब्द में। यह भगवान की कला थी, और परिणाम क्या हुआ? जितनी गोपियां थी भगवान का आवाहन प्राप्त हुआ है। धन्य है गोपियों का जीवन जिनको भगवान बुला रहे, श्री कृष्ण बुला रहे। सारे संसार के मालिक मधुराति मधुर, कामदेव को भी लज्जित करने वाला जिनका सौंदर्य, वो जिन गोपियों को बुलावे उनके भाग्य की सराहना तो कौन कर सकता है। वो गोपियां अत्यंत प्रसन्न होकर के भगवान कृष्ण का आवाहन, हाँ, बांसुरी से हमारा नाम लेके बुला रहे। जिनका जीवन कृष्ण थे, जिनके प्राण कृष्ण थे, जिनके मन कृष्ण थे, जिनकी बुद्धि कृष्ण थे। आप कहेंगे कहाँ लिखा है? भागवत में ही लिखा है, और भगवान कृष्ण ने ही कहा है गोपियों के परिचय में, ताह मन मनस्का मत प्राणाह मदर्थे त्यक्त दैहिका। उद्धव, वो गोपियों का मन मैं हूँ, माने गोपियों का मन कृष्णाकार है, उनकी बुद्धि मैं हूँ, उनका जीवन मैं हूँ, उनका धर्म मैं हूँ, उनका व्यवहार मैं हूँ, उनका सर्वस्व मैं हूँ। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है। अगर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि गोपियों का सर्वस्व मैं हूँ, उन गोपियों के विषय में आज का बुद्धिजीवी जो कृष्ण प्रेम से वंचित है वो क्या विचार करेगा? भगवान जिनको प्रमाण पत्र देते, आज गोपियां इतना प्रसन्न है, ठाकुर बुला रहे, जिनका सर्वस्व थे श्री कृष्ण, आज गोपियां सारा काम, जो गोपी जो काम कर रही थी वो छोड़ा नहीं, छूट गया। ऐसे बांसुरी में आवाहन था श्री कृष्ण का, कोई गोपी गैया का दूध निकाल रही थी, हाथ से बर्तन छूट गया और गोपी थोड़ा पागलों के जैसे जमुना पुलिन की ओर भाग चली। कोई भोजन बना रही थी, बर्तन चूल्हे पे छूट गया, गोपी भाग चली। कोई स्नान कर रही थी, कोई वस्त्र बदल रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी। एक बात लिखा है, व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, बोले कपड़े भी ठीक नहीं किए और भाग चली। यहाँ पर ये पता लगता है अगर गोपियों के जीवन में देहातीत अवस्था नहीं होती तो कोई भी गोपी कपड़े बिना ठीक किए भाग करके कृष्ण के पास नहीं जा सकती थी। वो भी महाराज का आवाहन, जिसका 2 वर्ष पूर्व इनको वरदान मिला है, उस दिव्य लीला के लिए जा रही हैं और बिना कपड़े ठीक किए। यहाँ तक लिखा है व्यत्यस्त वस्त्रा भरणा, हाथ का आभूषण पैर में पहन लिया, पैर का हाथ में पहन लिया, कपड़े ठीक नहीं है, काजल एक आँख में लगा दूसरे में लगा ही नहीं। ये है देहातीत अवस्था। देहातीत अवस्था है गोपियों का, धर्म अर्थ काम और मोक्ष छूट गया। कहाँ छूट गया? कृष्ण प्रेम में छोड़ा नहीं, ध्यान रखना, छूट गया। ये इनका जीवन था, जो उनका कर्तव्य था वो छूट गया, जो परिवार के प्रति प्रेम था वो छूट गया, जो शरीर के प्रति प्रेम था वो छूट गया, जो अंत तक नहीं छूटता, जब तक देहाध्यास समाप्त न हो। व्यक्ति घर परिवार छोड़ सकता है, संपत्ति छोड़ सकता है, लेकिन शरीर का मान सम्मान, शरीर का देहाध्यास, ये महाराज छूटना अत्यंत कठिन हो जाता है। बिना सदगुरु कृपा के या बिना कृष्ण प्रेम के ये छूटता नहीं, जो गोपियों का सहज में छूट गया। व्यत्यस्त वस्त्रा भरणा, वस्त्रों का ध्यान नहीं, आभूषणों का ध्यान नहीं, पागल की तरह गोपियां भाग चली। और श्री कृष्ण के महाराज में प्रवेश बिना पागल हुए होता भी नहीं। जब तक व्यक्ति, एक संत तो बड़े विनोद में कहते थे, तुमको जब कोई कहने लग जाए ना कि इनका दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो दुखी मत होना, सोच लेना कृष्ण भक्ति में हमारा नाम लिख दिया गया है। कृष्ण भक्त जब तक पागल नहीं कहलाएगा तो भक्त कैसा है? वो भक्त कैसा है? पागलपन, अरे लोग परिवार के लिए पागल होते हैं, व्यापार के लिए पागल होते हैं, पद के लिए पागल होते हैं, तो क्या भगवान कृष्ण ही सबसे सरल सहज हैं जो सारे संसार के मालिक हैं, बिना पागल हुए मिल जाएंगे? मीरा के विषय में लोगों का क्या कमेंट था? लोग कहें मीरा भाई बावरी पागल, यही कहा ना। और घर वाले क्या कह रहे थे? सास कहे कुल नाशी, इसने तो कुल का विनाश कर दिया, परिवार की इज्जत बर्बाद कर दी। ये कृष्ण प्रेम जब आता है तो छोड़ना नहीं पड़ता, छोड़ा देता है, छोड़ा देता है। गोपियों का सब कुछ छूट गया। हमारे गुरुदेव कहते हैं, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, महाराज सर्व त्याग के बिना होता ही नहीं। सर्व त्याग जो सन्यासी का जीवन होता है, सर्व त्याग, गोपियों के जीवन में सर्व त्याग हुआ है तब कृष्ण के महाराज में प्रवेश हुआ है। वो महाराज है, वो दिव्य लीला है, जहाँ पुत्तैषणा वित्तैषणा लोकैषणा, जो एक सन्यासी के लिए त्याज्य कहा गया है, वो गोपियों का कृष्ण प्रेम में छूट गया है। कंचन कामिनी कीर्ति, ऐषणा त्रय का त्याग, प्रतिष्ठा का त्याग, देहाध्यास की महाराज निवृत्ति, ये है गोपियों के महाराज का दिव्य रूप। वो गोपियों का जीवन, वो गोपियां भागती हुई श्री कृष्ण के पास, हजारों की संख्या में गोपियां श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती। वर्णन मिलता है कुछ गोपियों को उनके घर वालों ने जबरदस्ती पकड़ के अंदर बंद कर दिया, नहीं जाने देंगे। ये सारी घटना ये भी सिखाती हैं कि आज भी ऐसा होता है, किसी घर में भक्ति में सहयोग करने वाले लोग होते, और किसी घर में अगर कोई भक्ति करे तो उसको कमरे में बंद करने वाले लोग भी होते। देखता हूँ कैसे तो भजन करती, देखता हूँ कैसे आश्रम जाती महाराज। तो ये सबके साथ हुआ है। अरे तुलसीदास जी के साथ भी तो हुआ ना, पत्नी ने डांटा कि नहीं डांटा? बहुत जोर डांटा, लेकिन वो खाली डांट से तुलसीदास जी बन गए ऐसा नहीं था, राम जी की कृपा उसमें साथ में थी। पूज्य राम किंकर जी महाराज कहते हैं, अगर पत्नी के डांट से तुलसीदास तुलसीदास हुए तो उसके बाद अनेक तुलसीदास हो जाने चाहिए थे, तो उसके बाद तो कोई नहीं हुआ, और पत्नी की डांट तो कंटिन्यू है, तो उसके बाद तो कोई नहीं हुआ। तो वो एक निमित्त था, लेकिन भगवान श्री राम की कृपा साथ चल रही थी। इसीलिए भक्त के जीवन में अगर कोई विरोध आता है तो भी भगवान की कृपा, और सहयोग आता है तो भी भगवान की कृपा। भक्त के जीवन में बिना भगवत इच्छा के कुछ नहीं होता है। तो उन गोपियों को जिनको बंद कर दिया घर वालों ने घरों में, जानते उनका क्या हुआ? वो सबसे पहले पहुंची। जो भाग के गई थी उनसे पहले भी वो पहुंच गई। अब कहेंगे कैसे पहुंच गई? बोला पंच भौतिक शरीर उनका घर में बंद रहा, दुस्सह प्रेष्ठ विरहा, तीव्रता पधुता शुभा, ध्यान प्राप्ताश्च्युतालेश, निर्वृत्ता क्षीण मंगला। क्या विलक्षण परंपरा लिखी है। बोले जब बंद कर दिया, कृष्ण वियोग में इतना कष्ट हुआ उन गोपियों को, उनके जीवन के जो महाराज कुछ कलमस थे, दोष थे, वो खत्म हो गए। क्योंकि कलमस का फल क्या है? संताप। इतना संताप हुआ कि सारे कलमस खत्म हो गए। और ध्यान में श्री कृष्ण की अनुभूति हुई, जब बहुत वियोग हुआ तो ध्यान में संयोग हुआ, श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, उससे इतना आनंद आया कि सत्कर्म सारे खत्म हो गए। तो सत्कर्म और दुष्कर्म जब दोनों खत्म हो गए तो देह से छुटकारा मिल गया, दिव्य देह की प्राप्ति हो गई, और वो गोपियां पार्षद शरीर धारण करके, दिव्य शरीर धारण करके, जो गोपियां दौड़ के गई थी उनसे पहले श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। ये भगवान की विशेष कृपा थी, दिव्य शरीर धारण करके। तो यहां से भी स्पष्ट है कि जो महाराज की लीला थी ये भौतिक जगत की लीला नहीं, ये आज ही दैविक जगत की लीला है। ये दिव्य लीला है जो आज भी वृंदावन में होती है, और वृंदावन में नहीं, आज भी संतों के हृदय में होती है। पूज्य राधा बाबा जी का दर्शन किया है, डालमिया जी बैठे उनके, बड़े कृपा पात्र है पूज्य बाबा के। मैं गया था वहां एक बार, भावावस्था में हमेशा रहते थे। उनको भगवान की कथा सुनाते सुनाते ही भोजन कराते थे, तो करते थे, भोजन ही नहीं करते थे। वो दिव्य देह की लीला महाराज, तो दिव्य जगत की लीला है, पांच भौतिक जगत से ऊपर की लीला है, ये आधि दैविक जगत की लीला है। उसको पार्षद शरीर कहें, चिन्मय शरीर कहें, दिव्य शरीर कहें, नाम कुछ भी रख ले, लेकिन ये पांच भौतिक से परे लीला है। तो वो गोपियां शामिल हो गई जिनको बंद कर दिया गया था, और जो अनुमति से गई थी वो भी पहुंच गई, भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई। भगवान कृष्ण जमुना पुलिन पर खड़े खड़े मुस्करा रहे। आप उस दृश्य को देखें, आप ये मान के चलें कि आप इस समय जमुना पुलिन पर ही बैठे हुए हैं, और उस दृश्य को देखें भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच में आज कितना रस है, कितना आनंद है। जीवन का लक्ष्य था गोपियों का श्री कृष्ण को पाना, 2 वर्ष पूर्व उन्होंने वरदान दिया है, आज बांसुरी बजा के बुलाया है, गोपियों की प्रसन्नता की सीमा नहीं। भगवान कृष्ण के पास जाकर के उनको प्रणाम करती है, प्रभु आज आपने कृपा की, करुणा की, हमको सबको आवाहन किया, हम सब आपकी सेवा में आ गए। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं गोपियों को? प्रेम और विनोद। भगवान कृष्ण का जो स्वभाव है ना, और थोड़ा वो उनके अंदर की बात निकालना चाहती है हमारे आपके सुनने के लिए। भगवान कृष्ण बड़ी सुंदर बात कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियं किम करवाणि वहा, ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूता गमन कारणम्। गोपियो तुम्हारा स्वागत है। स्वागत, स्वागतम का अर्थ क्या होता है? सुष्ठु आगतम। संस्कृत में जो अर्थ होता है स्वागतम, माने आपका आना बहुत सुंदर हुआ, इसका अर्थ होता है स्वागतम, सुष्ठु आगतम, स्वागतम। भगवान कृष्ण गोपियों को कहते हैं स्वागतम, आओ आओ, आपका स्वागत है। एक एक शब्द अगर आप ध्यान से सुने, सारे संसार का मालिक राश बिहारी जिन गोपियों को खड़े होकर स्वागत करते हैं, उन गोपियों के विषय में संसारी पीछे क्या विचार करेगा? क्या विचार? भगवान कृष्ण जिसको बोलते हैं स्वागतम स्वागतम स्वागतम, भागवत में लिखा हुआ स्वागतम वो महाभागा, आओ गोपियों तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं क्या करूं? आप कल्पना कर सकते हैं। भगवान पूछते हैं, आप अपने महाराज कोई विशिष्ट संत आ जाए तो पूछते हैं महाराज क्या सेवा करें, या कोई विशिष्ट आपका सम्मानित व्यक्ति आ जाए तो पूछते हैं क्या सेवा करें। जानते हो आज सारे संसार का मालिक श्री कृष्ण गोपियों से पूछ रहा है, गोपियों तुम्हारी क्या सेवा करूं। आप कल्पना कर सकते, ये वो गोपियां, उन गोपियों को बिना समझे उस रस का आनंद नहीं मिलेगा जो रस था। कितना प्रेम, कितना निश्चल भाव, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणी वाह, आपकी खुशी के लिए मैं क्या करूं। जैसे एक सामान्य व्यक्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति से पूछता है आपकी खुशी के लिए हम क्या करें, आज ठाकुर उनसे पूछ रहा है, श्री कृष्ण पूछ रहे गोपियों तुम्हारी खुशी के लिए मैं क्या करूं। गोपियां मौन है, क्यों? गोपियों को आश्चर्य होता है कि क्या करूं, ये प्रश्न क्यों हो रहा है। 2 वर्ष पहले कहा था कि मैं महारास करूंगा, आज बांसुरी बजा के बुलाया है और फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं क्या करूं। वो तो उनको मालूम है क्या करना है। ये नटवर नागर है, ये नटखट है, थोड़ा हास्य विनोद आनंद तत्व प्रधान अवतार है श्री कृष्ण। आनंद तत्व प्रधान, सत तत्व प्रधान है श्री राम, चित तत्व प्रधान है कपिल भगवान, और आनंद तत्व प्रधान है श्री कृष्ण। सच्चिद आनंद तीनों में रहते हैं, अद्वितीयता तीनों में रहती, लेकिन एक एक तत्व की प्रधानता होती। श्री कृष्ण सच बोले तो भी आनंद, और श्री कृष्ण झूठ बोले तो भी आनंद। वो झूठ भी किसी उद्देश्य के लिए नहीं बोलते, खुशी के लिए, बाल लीला का आनंद देने के लिए। श्री कृष्ण युद्ध करें तो भी आनंद, और युद्ध से भाग जाए तो भी आनंद। गुजरात में रणछोड़ राय का मंदिर बना है, युद्ध से भाग गए वहां भी मंदिर बना दिया रणछोड़ राय भगवान। ये आनंद तत्व प्रधान अवतार है महाराज। तो श्री कृष्ण थोड़ा नटखट भी है और गोपियों के हृदय की बात निकालना चाहते, इनके हृदय में क्या भाव वो तो जानते, लेकिन हमारे आपके लिए जो आगे पढ़ेंगे सुनेंगे, भगवान कहते हैं क्या करूं तुम्हारी खुशी के लिए गोपियों। गोपियां मौन, गोपियां जानती हैं हम क्या बताऊं, इनको मालूम है किस लिए बुलाया, इन्होंने वरदान दिया है। जब कुछ नहीं बोले तो स्वयं ही अनुमान लगाते, अनुमान क्या, वो विनोद करते, अरे गोपियों क्या शरद पूर्णिमा के सुंदर सौंदर्य को देखने के लिए चांदनी रात को देखने के लिए आयो, यमुना किनारे तो देख लो सुंदर मालती के पुष्प खिले हुए हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, चांदनी चंद्रमा की चांदनी बिखर रही है, सुंदर महाराज रजत जैसा श्रृंगार आज वृंदावन का हो रहा है, देखो देखो कितना सुंदर है। लेकिन देख के अपने अपने घरों को जाओ, अगर सुंदरता देखने आई हो तो देख लो और देख के जाओ। गोपियां फिर मौन, हम तो श्री कृष्ण का सौंदर्य देखने के बाद क्या और कोई सौंदर्य हमको आकर्षित कर सकता है क्या। जिसने श्री कृष्ण का सौंदर्य एक बार देख लिया, क्या प्रकृति का सौंदर्य उसको आकर्षित करेगा, नहीं कर सकता है। एक बार जिसने ठाकुर का सौंदर्य देख लिया महाराज, वो प्रकृति के सौंदर्य में आकर्षित नहीं होगा, यही उसकी पहचान, यही उसकी पहचान। फिर भगवान पूछते, गोपियों ने जब कोई जवाब नहीं दिया, अरे गोपियों क्या मैंने बांसुरी बजाई तो मेरे से मिलने के लिए आ गई, तो चलो मिलना तो हो गया, अब लौट जाओ। गोपियों को जब बोलते हैं कि लौट जाओ तो उनके शरीर में प्राणांतक वेदना होती, लेकिन वो बोल रहे अब ये भक्त और भगवान का प्रणय युद्ध है। गोपियां कोई जवाब देना नहीं चाहती और श्री कृष्ण उनसे जवाब लेना चाहते, वो नहीं बोलना चाहती। लौट जाओ जब बोलते हैं तो बहुत कष्ट होता है, लेकिन मौन है, ये समर्पण, भगवान को जीवन दिया है, वो कहें रहो तो भी उनकी है, कहें लौट जाओ तो भी उनकी है, ये समर्पण। फिर भगवान एक बात और कहते, अरे गोपियों जानती हो रात्रि के समय अपना घर परिवार छोड़ करके किसी कन्या को घर से बाहर जाना मर्यादा के खिलाफ है, तुमको अपने घर में तुम्हारे परिवार के लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अपने घर की सेवा छोड़ के आई हो, काम छोड़ के आई हो, जाओ जाओ अपने पतियों की सेवा करो, परिवार की सेवा करो और घर लौट जाओ। तीन बार जब श्री कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण जो चाहे वही होता है, दूसरा कुछ हो नहीं सकता है, गोपियों को लगा कि शायद ये सही में लौटाना चाहते। दो बार जब कहा तब तो उनको लगा कि थोड़ा विनोद कर रहे हैं, क्योंकि उनका स्वभाव है विनोद करने का। जब तीसरी बार कहा तो उनको लगा कि ठाकुर जी शायद सही में लौटाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जानते हो गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन वियोग का चिंतन करके, क्या आज हमको लौटना पड़ेगा, इश्क का चिंतन करके गोपियों के आंखों से अश्रुपात होने लग गया, रोने लग गई। समर्पण है, मना कर नहीं सकती, ठाकुर जी कहेंगे तो जाना होगा, लेकिन वियोग को सहन भी तो करने की सामर्थ्य नहीं है, रोने लग जाती। और इतना रुदन होता है, अश्रुपात होता है, कि उनके आंखों में जो काजल लगा था गोपियों के, वो आंसुओं के सहारे बहता हुआ पैरों तक पहुंच गया, इतना अश्रुपात होता है। एक ही लक्ष्य था, भगवान कृष्ण की प्राप्ति। आज वो भी जाने के लिए कह रहे हैं, गोपियों को अत्यंत व्यथा होती। अब गोपियां जब रोने लग गई और श्री कृष्ण मौन हो गए, संवाद रुक गया। श्री कृष्ण मौन है, गोपियां बोलने की स्थिति में नहीं। अब कथा आगे कैसे बढ़े, कौन बोले, सुखदेव जी बोलते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रेष्ठम प्रियतरमिव प्रतिभाषमाणम कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामा। सुखदेव जी महाराज की आंखों में प्रेम के आंसू बह रहे। परीक्षित, ये वही गोपियां हैं जिन्होंने श्री कृष्ण के लिए सर्वस्व का त्याग किया है, ये वो गोपियां हैं। सुखदेव जी ने मुहर लगाई और ऐसा लगता है आज सुखदेव जी श्री कृष्ण का पक्ष छोड़ के गोपियों के पक्ष से बोल रहे हैं। श्री कृष्ण को ऐसा कठोर नहीं बोलना चाहिए जो श्री कृष्ण ने बोला है। सुखदेव जी गोपियों के पक्ष से बोल रहे हैं, ये वही गोपियां हैं राजन जिन्होंने सर्वस्व का त्याग किया है श्री कृष्ण के लिए। आज वो श्री कृष्ण इनको लौटने के लिए कह रहे। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी एक भाव लिखते यहां पर, गौड़ी संप्रदाय के महापुरुष, वो कहते हैं, गोपियों के आंखों से जो काजल युक्त अश्रुपात हो रहा था पैरों तक चला गया, एक निशान बन गया शरीर में। और पुराने लोग जो यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं, पहले लकड़ी जब काटते थे तो आरा एक मशीन होती थी, आरा मशीन, और लकड़ी काटने के पहले उसमें एक निशान लगाते थे, निशान धागा से लाल या काला निशान लगाते थे, फिर आरा चलता था जैसे सीधी लकड़ी कटे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, गोपियों ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मौन भाषा में मानो श्री कृष्ण से निवेदन कर रही हैं, श्याम सुंदर अगर आज भी हमको लौटने के लिए ही कह रहे हो तो ये शरीर लौटने की स्थिति में नहीं है, निशान हमने बना दिया है, आरा चला के समाप्त तो तुम कर दो, अब ये शरीर लौटने लायक नहीं रहा, ये लौटने की दशा में नहीं रहा। क्या भाव था गोपियों का, और ये महापुरुष, ये जीव गोस्वामी जी, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती, ये सुखदेव जी महाराज, ये इतने प्रेमी थे, ये वो जीव गोस्वामी जी थे जो स्त्रियों से मिलते नहीं थे। जब साधना काल में थे स्त्रियों से मिलना बंद कर दिया था, एक अनुष्ठान के समय भक्तिमती मीरा जब पहुंची और बहुत महिमा सुना था जीव गोस्वामी जी की, और उन्होंने मिलना चाहा, संदेशा दिया, वो एक ही नियम था, माताओं से नहीं मिलते। मीराबाई से कहा गया आदेश से माताओं से नहीं मिलते, मीराबाई ने कहा मेरा एक संदेश और दे दो। क्या संदेश, मीराबाई ने कहा मैंने सुना था ब्रज में पुरुष तो केवल श्री कृष्ण है, बाकी ब्रज में जितने लोग रहते हैं सब गोपियां हैं, ये दूसरा पुरुष कौन है इसका परिचय मेरे को चाहिए। ये संदेश लेके वो सेवक जब जीव गोस्वामी के पास पहुंचा, जीव गोस्वामी जी साधना छोड़ के दौड़ते हुए आते हैं और मीराबाई को प्रणाम करते हैं, मीराबाई से मिलते हैं। वो समझ गए ये कोई सामान्य महिला नहीं है, ये देहातीत महिला है, ये शरीर से ऊपर उठी हुई महिला है, ये वो जीव गोस्वामी जो माताओं से मिलते नहीं थे, वो जीव गोस्वामी ये उत्प्रेक्षा कर रहे हैं गोपियों के लिए, मानो अश्रुपात से युक्त काजल से लकीर बना दिया है, और गोपियां कह रही हैं श्री कृष्ण जीवन समाप्त तुम कर दो, क्योंकि अब ये जीवन लौटने की स्थिति में नहीं, आप नहीं स्वीकार करोगे आपकी इच्छा, हम तो कुछ कह नहीं सकती, ये जीवन आपका है, लेकिन हमारी विवशता है कि अब हम आपकी आज्ञा का पालन भी नहीं कर पा रहे, हम चाह करके भी लौट नहीं पा रहे हैं श्याम सुंदर, अब तो ये जीवन समाप्त ही करना होगा। यहाँ इतने बड़े बड़े महापुरुष गोपियों के पक्ष में बोल रहे हैं, जीव गोस्वामी जी जैसे महापुरुष, विश्वनाथ चक्रवर्ती जैसे महापुरुष, सुखदेव जी जैसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, आज श्री कृष्ण के पक्ष में नहीं गोपियों के पक्ष में बोल रहे हैं। जहाँ देवर्षि नारद ने अपने भक्ति सूत्र में अगर प्रेम का कोई आदर्श चयन किया तो यथा ब्रज गोपी का नाम, देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र में प्रेम के आदर्श के रूप में नारद जी ने गोपियों का चयन किया, ये वो गोपियां हैं। श्री कृष्ण की बात छोड़ो, गोपियों की इतनी जहां महिमा है वो आप लीला की भावना कर सकते हैं, वो लीला कितनी दिव्य होगी, कितना रस होगा, जहां दुनिया के दोषों का प्रवेश संभव नहीं, जहां पांच भौतिक पदार्थों का प्रवेश संभव नहीं, वो लीला तो चिंतनीय लीला है, वो ध्यान की लीला है। गोपियां मौन है, अश्रुपात उनके आंखों से हो रहा है, बहुत देर तक मौन रहने के बाद भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि गोपियां कुछ सुनावे, गोपियों का हृदय प्रकट हो। गोपियां बहुत देर रोने के बाद फिर अपने हृदय की बात को श्री कृष्ण के सामने रखती हैं, जिसका नाम है प्रणय गीत। इस रास पंचाध्याय में दो गीत हैं, पहला है प्रणय गीत, आगे आएगा गोपी गीत। प्रणय गीत माने प्रेम में गोपियां श्री कृष्ण को जो निवेदन करती हैं, प्रणय का अर्थ होता है प्रेम। वो कहती हैं गोपियां, मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव बात मूलम, भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजाश्मान, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। विभु, विभु शब्द का प्रयोग, हे विभु माने व्यापक, विभु माने व्यापक। गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण तुम तो व्यापक हो, संकेत क्या है, व्यापक हो तो हमारे हृदय में भी तो बैठे हो, और हमारे हृदय में बैठे हो तो हमारी मनोदशा का भी तो आपको पता है ना, जानते हुए हमारी मनोदशा क्या है आपको ऐसे कठोर वाक्य नहीं बोलना चाहिए। ये नहीं कहा कि मत बोलिए, नहीं बोलना चाहिए, कितना शील, कितना प्रेम। कठोर वाक्य क्या बोला, उन्होंने तो बड़े प्रेम से कहा कि घर लौट जाओ, अरे वाणी मधुर थी लेकिन उस वाणी का अर्थ बड़ा कठोर था, जो लौटने के लिए कह रहे वो कठोरता थी, वाणी कठोर नहीं थी, बोले तो बहुत मीठे मिठास से थे। आप विभु हैं, आप व्यापक हैं, आप हमारे हृदय की अवस्था जानते हैं श्याम सुंदर, आपको कम से कम ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम लौट जाएं, क्यों, क्योंकि हमारा सारा संसार छूट चुका है, हम लौटें भी तो लौट के जाएं का, हमारा कोई है नहीं, हमारा कृष्ण को छोड़ के आज कोई नहीं है, ठाकुर आपको मालूम है हम कहाँ लौट के जाएं, किसके पास जाएं। आपने कहा अपने परिवार के पास जाओ, परिवार की सेवा करो श्री कृष्ण, परिवार की सेवा का फल जब हमको मिल गया तो क्या वापस लौटना होगा, सारी सेवा का फल क्या है, परिवार की सेवा हो, समाज सेवा हो, संत सेवा हो, अगर सेवा निस्वार्थ है तो सेवा का फल है ईश्वर के प्रेम की प्राप्ति, ईश्वर की अनुभूति। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर, सेवा के फल के रूप में आप तो मिल गए हमको, अब हमको लौटने का क्या प्रयोजन है हमको समझ नहीं आ रहा है। आप कहते हैं लौट जाओ, लौट के जाएं कहाँ और किस लिए जाएं, ये सुनाती उनके हृदय के भाव हैं। और श्री कृष्ण, अगर आपको लौटाना ही था तो हमको वेणु गीत में बांसुरी बजा करके हमारे हृदय में अपने पाने की लालसा को आपने क्यों जगाया, माखन चोरी करके हमारे चित्त को क्यों चुराया, चित्तम सुखेन भवताप हृदम गृहेशु, हम तो अपने घर परिवार में रह रही थी, तुम्ही ने प्रारंभ किया माखन चोरी के माध्यम से चित्त को चुराना, तुम्ही ने बांसुरी बजा के हमारे चित्त में कृष्ण प्रेम को प्रकट किया कन्हैया, अगर हमको घर परिवार में ही रखना था तो हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम को क्यों जगाया। यहाँ गोपियां स्वीकार कर रही, कृष्ण प्रेम हमने नहीं जगाया श्री कृष्ण, कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में आपने जगाया। श्री कृष्ण जिनका चित्त को स्वीकार करे, जिनका जीवन इतना अच्छा हो कि श्री कृष्ण उनको चाहें कि ये हमारी हो जाए, वो गोपियां हैं। चित्तम सुखेन भवता हृतम, आपने हमारे चित्त को छीना है, हमने अपना चित्त आपको दिया नहीं, आपने छीन लिया, लौटाना ही था तो क्यों छीना हमारे चित्त को। फिर भी श्री कृष्ण ये जीवन तुम्हारा है। समर्पण का अर्थ है आराध्य जो कहे उसका पालन करना। आप कहेंगे तो हम चली जाएंगी, लेकिन अब हमारे शरीर में चलने की ताकत नहीं, वियोग से इतना जर्जर हो गया शरीर, वियोग व्यथा से। ये महाराज भजन साधना में ये दोनों दशाएं आती, वियोग की जब पीड़ा होगी तो शरीर की शक्ति बहुत कम हो जाती, और संयोग की अनुभूति होगी तो शरीर की शक्ति बहुत बढ़ जाती। ये भजन के रस से प्रभाव पड़ता है, वियोग में संताप और संयोग में रस, ये दोनों का प्रभाव स्थूल शरीर पे भी पड़ता है। जितने वियोग की साधना हुई, उस आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु हो चाहे श्री हरिदास जी हो, उनका आप शरीर देखें सूख के लकड़ी जैसा हो जाता था। संताप इतना होता है। एक संत हुए हैं कोकिल साईं, हमारे गुरु जी के साथ थे, गुरु जी के पास आते थे वृंदावन में कोकिल साईं। वो पहले पाकिस्तान में रहते थे, तो ये विभाग हो गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो वो यहाँ आ गए, भारतवर्ष आ गए, वृंदावन में रहते थे। पाकिस्तान में जब वो रहते थे तो एक दिन स्नान के समय कृष्ण का इतना वियोग हुआ कि उनके शरीर में इतनी गर्मी आ गई वियोग की व्यथा से, कि बाथरूम में जिस पत्थर पे वो खड़े हुए थे वो पत्थर पिघल गया, उनके चरण चिन्ह उस पत्थर पे बन गए। वो पत्थर आज भी वृंदावन में रखा हुआ है, आज भी रखा है। ये कोई 60-70 वर्ष पहले की घटना है। तो अगर आप मेडिकल साइंस के हिसाब से 108 डिग्री टेम्परेचर किसी शरीर में हो जाए तो शरीर बचना मुश्किल होता है, लेकिन 108 डिग्री टेम्परेचर वाले शरीर में आप पत्थर का स्पर्श कराओ तो पत्थर नहीं पिघलेगा। आप कल्पना करें जिसके शरीर के स्पर्श से पत्थर पिघल गया और वो शरीर बचा हुआ है, वो किसने किया? वो श्री कृष्ण की लीला। इतना कितना टेम्परेचर होगा उनके शरीर में जो उनके चरण चिन्ह पत्थर पे बन गए। वो पत्थर अभी रखा हुआ है वृंदावन में। आप अगर कभी जाएं बिहारी जी के पास ही एक सुखदेव सदन करके स्थान है भक्त कोकिल का, वहाँ वो पत्थर रखा है, बहुत लोग जाके प्रणाम करते हुआ। ये तो अभी की घटना है, 60-70 वर्ष पहले की। तो वियोग में इतना व्यथित हो जाता है व्यक्ति कि शरीर की स्थिति नहीं। आज गोपियां वही कह रही, आपके वियोग की कल्पना करके हमारे शरीर की शक्ति गायब हो गई, हम चलने की अवस्था में नहीं है, हम कैसे जाएं? पादौ पदम न चलतस्तौ पादम उलात, हमारे पैर चलने की स्थिति में नहीं है। और अगर आप प्रयास करके किसी तरह भेज भी दे तो हमारे हाथ अब कुछ करने की स्थिति में नहीं है। परिणाम क्या होगा श्री कृष्ण जानते हो। अगर आप हमको स्वीकार नहीं करेंगे, नोचेत वयम विरह जाग न्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीम सखेते, अगर आप हमको स्वीकार नहीं करेंगे श्री कृष्ण तो आपके वियोग में विरहाग्नि जल जाएगी और विरह की अग्नि में शरीर भस्म हो जाएगा, और ध्यान के द्वारा हम आपको प्राप्त कर लेंगे तो इसमें कोई समस्या तो नहीं है श्री कृष्ण, लेकिन समस्या तुम्हारी भक्ति की आ जाएगी, तुम्हारे प्रेम की आ जाएगी, तुम्हारे नाम की आ जाएगी। कल से कोई कृष्ण प्रेम के रास्ते पर नहीं चलेगा, सब लोग यही कहेंगे गोपियों ने सारी दुनिया छोड़ दी कृष्ण के लिए, और कृष्ण ने इतना तड़पाया कि उनका जीवन ही समाप्त कर दिया। श्री कृष्ण तुम्हारा रास्ता बदनाम होगा, तुम्हारा प्रेम बदनाम होगा, शरीर जाए हमको चिंता नहीं, लेकिन यह है प्रेम, यह है गोपियों का जीवन, जो मरने के बाद भी शरीर छोड़ने के बाद भी श्री कृष्ण के ऊपर कलंक नहीं लगने देना चाहते, ये प्रेम, इसका नाम प्रेम है। आज प्रेम कौन करेगा। और जीव गोस्वामी जी ने एक अर्थ और किया है इसी पंक्ति का, ध्यानेन याम पदयोह पदवीम सखेति। एक गोपी कहती है, जानते हो श्री कृष्ण, मैंने सुना है। क्या? बोले व्यक्ति अंतिम समय में जिसका ध्यान करता है अगला जन्म उसी का होता है। ये शास्त्र का विधान है। यम यम वापिस मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो हम तुम्हारी याद करते करते जब जीवन का त्याग करेंगी तो अगले जन्म में हम कृष्ण हो जाएंगी, और जब हम सब की सब गोपी चली जाएंगी तो हमको मालूम है कृष्ण तो माखन के बिना एक दिन भी रह नहीं सकते थे, हमसे मिले बिना एक दिन भी रह नहीं सकते थे। हमको मालूम है जब हम सब चले जाएंगे तो तुम भी रोते रोते हमारा ध्यान करते करते इस लोक से जाओगे तो अगले जन्म में तुम गोपी बनोगे, हम कृष्ण बनेंगे, तो सोचो फिर क्या होगा। हाँ, ये भी एक भाव, एक टीका काट बड़ा युक्त युक्त। अब देखे क्या उसका रस है, कितना आनंद है। गोपिया कहती है फिर हम कृष्ण, इतने कृष्ण हो जाएंगे और गोपी एक हो जाएगी, बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए ठाकुर जी आप हमको जाने के लिए मत कहो, हमको स्वीकार कर लो। कितनी युक्तियां हैं, कितने तर्क हैं। और वो कहती हैं गोपियां, यरि मुजाक्षतौ पाद तलम रमाया दत्तक क्षणम क्वचित अरण जनप्रियस्य। अरण जनप्रियस्य, आह, बड़े बड़े संत लोग जो जंगल में रहते हैं आपकी प्राप्ति के लिए, आपके चरणों के दर्शन के लिए, वो चरण आपने सहज रूप में हमको दिए, सहज रूप में। ये गोपिया है महाराज, बड़े बड़े संत किस लिए साधु बनते, साधना किस लिए करते हैं, भगवान की अनुभूति हो, भगवान का दर्शन हो। वो कौन से भगवान, ये यही भगवान थे जो गोपियों के डांटने के बाद भी उनका माखन चुरा के ले जाते थे, वही भगवान थे जो गोपियों के कपड़े लेके तमाल के वृक्ष पे बैठ जाते थे, वही भगवान के लिए तो साधना करते हैं ना। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े साधक, गोपियां कहती हैं जिन चरणों को आप बड़े बड़े अरण्य जनप्रिय से जो जंगल में रहते विरक्त हो जाते हैं आपकी कथा सुन करके, आपके भजन के प्रभाव में घर परिवार छोड़ देते, जितने साधु हुए किसी न किसी संत के प्रभाव में या भगवान की कथा के प्रभाव में हुए महाराज। तो ये जो भगवान की कथा से घर परिवार छोड़ दिए, लेकिन किसके लिए, तुम्हारे पाने के लिए। अरे उन्होंने घर छोड़ा तुमको पाने के लिए और आपने घर छोड़ा हमको पाने के लिए। श्री कृष्ण तुम अपना घर छोड़ के हमारे घर में आ जाते थे, जबरदस्ती माखन चुरा के खा जाते थे। श्री कृष्ण वो बातें याद करके हमारा हृदय विदीर्ण हो रहा है, हमको भरोसा नहीं होता कि तुम वही श्री कृष्ण थे जो डांटने के बाद भी जबरदस्ती माखन चोरी करते थे, जो महाराज एक एक माखन के लोंदे के लिए नाचते थे, नाचते थे। हाँ, गोपी कहती थी नाचो लाला, कन्हैया कहते थे क्यों नाचू, गोपी कहती थी माखन का लोंदा दूंगी, अच्छा तो नाचता हूँ। हाँ, नाचता हूँ। वो पूर्ण काम परमात्मा, आप तो काम परमात्मा। एक दूसरे ग्रंथ में एक लीला आती है, एक दिन भगवान कृष्ण कहीं गए नहीं तो गोपी ने बहाना बनाया कि आज दर्शन कैसे हो कृष्ण का। यशोदा मैया के पास पहुंच गई, मैया मैया आज कल घर में कुछ उत्सव है तो गोबर चाहिए गैया का, घर की लिपाई करनी। मैया ने कहा तो गोबर भी कोई मांगने की चीज है, दूध दही मांगती घी मांगती तो भी बात, ले जा जितना गोबर चाहिए। अब वो गोपी गोबर को भर लिया टोकरी में और इतना भर लिया कि उठे नहीं, जानबूझ के इतना भर लिया। क्यों, अगर उठ जाएगा तो लोग बोलेंगे खड़ी क्यों, ले जा। अब उठ नहीं रहा है तो देख रहे कोई उठाने वाला आवे, और देख किसको रही है, श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण भक्त वांछा कल्पतरु वहां आ गए, उन्होंने गोपी से कहा गोपी क्यों खड़ी है, क्या बात है। अरे गोपी ने कहा लाला ये टोकरी नहीं उठ रही गोबर की, जरा तू उठवा दे। कन्हैया ने कहा क्या मैंने ब्रज में गोबर उठाने के लिए अवतार लिया है, तेरा गोबर उठाऊं। नहीं नहीं लाला, इसलिए अवतार नहीं लिया, लेकिन जानते हो तुम जितनी टोकरी उठवाओगे उतने लोंदा माखन दोगी, हाँ तब उठवा देता हूँ। हाँ, टोकरी उठवा दी। वो गोपी बोलती ठहरियो लाला मैं फिर आ रही हूँ, गोबर एक टोकरी से नहीं होगा। और बार बार टोकरी लाती है, गोबर भरती है और ठाकुर जी उठवाते हैं, टोकरी लेके जाती आती जाती आती जाती। श्री कृष्ण कहते कितनी टोकरी हो गई, गिनती तो करनी पड़ेगी ना, कितना लोंदा मिलेगा। गोपी बोलती है गिनती तो मेरे को भी नहीं आती और तेरे को भी नहीं आती। हाँ देखो क्या प्रेम की पराकाष्ठा, सरलता की पराकाष्ठा। गोपी इतने ही कहते कि मेरे को नहीं आती तो वहां तक ठीक था, वो कहती मेरे को भी नहीं आती तेरे को भी नहीं आती, अब गिनती कैसे होगी कितनी टोकरी में ले गई। श्री कृष्ण बोले तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। गोपी बोले एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले जितनी टोकरी तो उठाएगा उतने गोबर के टीके तेरे माथे पे लगाती जाऊंगी, और जब काम पूरा हो जाएगा तो टीके की गिनती कर लूंगी और उतना लोंदा माखन तेरे को खिला दूंगी। श्री कृष्ण बोले ठीक है, 20 टोकरी हो गई, 25 हो गई, 30 हो गई, सारे मुख में गोबर के टीके। और नारद जी आते थे रोज वृंदावन में दर्शन करने ठाकुर की लीला का। नारद जी हाथ जोड़ के हंसने लग गए, महाराज ये श्रृंगार तो पहली बार देखा आपका, ये श्रृंगार तो कभी देखा ही नहीं। गोमय मंडित भाल कपोलम। श्री कृष्ण बोले नारद ठहरो, अभी स्तुति स्तुति मत करो, लोगों को पता लग जाएगा भगवान है, लीला में विघ्न पड़ेगा। नारद जी बेचारे रुक गए। यशोदा मैया आई, लाला को खोजती हुई, कन्हैया ये गोबर के टीके क्यों लगाए तूने आज, ये क्या लीला की तूने? अरे मैया माखन के लोंदे मिलेंगे इतने। यशोदा मैया को प्रेम की पराकाष्ठा, आंखों से प्रेम के आंसू आने, इतना सरल मेरा लाला माखन के लालच में गोबर की टोकरी उठा रहा है। गोपी के लिए गोपी को डांटा, अरे गोपी तू माखन मेरे से ऐसे ले जाती, मेरे लाला से गोबर उठवाती। आज वो गोपियां याद करती हैं, कन्हैया इन लीलाओं के द्वारा तुमने हमारे चित्त का अपहरण कर लिया है। आज तुम बोलते हो हम लौट जाए, हम कैसे लौट जाए? आज उन लीलाओं को याद करके हमारा हृदय विदीर्ण हो रहा है। कन्हैया हम लौटने की दशा में नहीं है, अगर तुम नहीं स्वीकार करोगे तो हमारा जीवन आज चला जाएगा, ये अंतिम शायद मिलन होगा तुम्हारे साथ, अगर तुम मना कर दोगे वो घटनाएं वो लीलाएं वो सरलता गोपियों की। भगवान कृष्ण के साथ गोपियां कहती हैं, अरे कन्हैया आपका वरण करने करके हमने कोई गलती थोड़ा की, लक्ष्मी जी भी हमने सुना है गर्गाचार्य जी से, लक्ष्मी जी भी जब समुद्र से निकली थी तो सबको छोड़ करके आपका ही वरण किया था, ब्रह्मा को छोड़ा, शिव को छोड़ा, इंद्र को छोड़ा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को छोड़ा, तुम्हारा ही तो वरण लक्ष्मी जी ने किया था। लक्ष्मी तो परम बुद्धिमती है, अगर उन्होंने तुम्हारा वरण किया तो हमने भी उनको देख के ही तुम्हारा वरण किया है कि वरणीय तुम ही हो, वास्तव में वरण करने योग्य तुम ही हो। गोपियां अपने हृदय के भाव व्यक्त कर रही हैं। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे, कोई जवाब अभी नहीं दे रहे, क्यों? ये हमको आपको बताने के लिए कि गोपियों का हृदय क्या था, कितनी सरल थी, कितनी सहज थी, कितनी समर्पित थी। तब श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला किया है और उन गोपियों का रासलीला में प्रवेश हुआ है। आगे क्या संवाद होता है और लीला कैसे प्रारंभ होती है ये चर्चा कल करेंगे, आज का समय पूरा हो रहा है। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय, जय श्री राधे। थोड़ा संकीर्तन करें 2 मिनट, उसके बाद जाए।
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
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 परम धन राधा 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 राधा,
परम धन राधा
राधा राधा राधा राधा राधा,
परम धन राधा 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 राधा,
जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा,
जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा,
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
राधा श्री राधा श्री राधा,
धन राधा
Thank you.